मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आहा, कहते हैं कि मे परीक्षा सर्वे संसार महाटवी मतिक्रमित अभ्युद्यत मभिद्रवंती उत कश्चित प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते। क्या यह परीक्षा सारे के सारे संसार पार करने वाले साधु पर उपद्रव करते हैं अथवा कोई उसमें विशेषता है, कोई भेद है? ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं अमी व्याख्यात लक्षणाः शुद्धादयश चारित्रांतराणि प्रति भाज्याः। चारित्र के जो भेद हैं, सामायिक छेद उपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्रदाय यथाख्यात, तो उन चारित्रों की अपेक्षा से ये परिषद विभाजन को प्राप्त हो जाते हैं। नियमेन पुनरनयोः प्रत्येतव्याः, नियम की अपेक्षा से इन दो चारित्रों में ये मान लीजिएगा कि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश, दसवा सूत्र नवम अध्याय का आचार्य उमा स्वामी द्वारा प्रणीत है। वो कह रहे हैं कि सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है ना, पहला चरित्र सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्थ वीतराग यथाख्यात, तो यथाख्यात में अभी यथाख्यात चारित्र जो होता है वो सराग अवस्था में नहीं होता, वीतराग अवस्था में होता है। पर वीतराग दो प्रकार के होते हैं, छद्मस्थ वीतराग और सर्वज्ञ वीतराग। तो सर्वज्ञ वीतराग जो होते हैं वो केवली भगवान होते हैं, पर उनसे पहले जो वीतराग हो चुके हैं लेकिन केवली नहीं हुए हैं, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान वाले, तो उनके चतुर्दश 14 परिषद होते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक चर्या शय्या वधालाभ रोग तृणस्पर्श मल प्रज्ञा ज्ञानानि चतुर्दश इति वचनाद निशाम परिषहाणाम अभावो पीड़ितव्य। ये 14 परिषद होते हैं, बाकी परिषदों का इनमें अभाव रहता है। आहा, युक्तम तावत वीतरागत छद्मस्ते मोहनीया भावात तत्कृत वक्षमाणाष्ट परिषहा भावात चतुर्दश नियम वचनम सूक्ष्म सांप्रायेतु मोहोदय सद्भावात चतुर्दश इति नियमो नोपपद्यत इति। कोई कहता है कि ये उचित है कि छद्मस्थ वीतराग यानी राग के अभाव में मोहनी कर्म का अभाव होने के कारण उससे उत्पन्न हुए आगे कहे जाने वाले जो 8 परिषय हैं उनका अभाव होने के कारण 14 का नियम बन जाता है, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय में तो मोह का उदय है। सूक्ष्म सांप्राय दशम गुणस्थान का नाम है और उसमें सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय रहता है, संजनन लोभ का, बाकी किसी का उदय नहीं रहता, पर उसका तो उदय है, तो इसलिए वहां पर 14 का नियम कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, ऐसा किसी का प्रश्न है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी उत्तर देते हैं तदा युक्तम, ऐसा कहना उचित नहीं है तुम्हारा। क्यों? तो सन मात्र अस्तित्व मात्र तो है तत्र ही, क्योंकि वहां पर केवलो लोभ संज्वलन कषायोदय सोप्यति सूक्ष्म, मात्र लोभ संज्वलन कषाय का उदय है और वो भी अति सूक्ष्म है। ततो इसलिए वीतराग छद्मस्त कल्पत्वात्, वीतराग छद्मस्त के कल्प यानी एकदम करीब है, एकदम निकटवर्ती होने के कारण चतुर्दश इति नियमस्तत्रापि युज्यते, 14 इस तरह का जो नियम है वो वहां भी युक्त है, युज्यते जोड़ा जा सकता है। ननु फिर शंका, मोहोदय सहाया भावान मंदोदयत्वाच्च शुदादि वेदना भावात तत्सहन कृत परिषह व्यपदेशो न युक्तम अवतरते न युक्तिम अवतरती। मोहोदय की सहायता का अभाव होने के कारण अथवा मोह का मंद उदय होने के कारण, सूक्ष्म सांप्रदाय में मंद उदय है और उसके ऊपर वाले गुणस्थानों में मोहोदय का अभाव है, वीतराग है, तो उस कारण शुद्धाधिक वेदनाओं का अभाव हो जाने के कारण उनके सहन करने से उत्पन्न जो परिषय है वो संज्ञा युक्तिम न अवतरती, उचित नहीं होती, माने परेशा कहना युक्ति युक्त नहीं रहता। तन्न आचार्य कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, आचार्य कहते हैं कि वैसा नहीं है, किम कारण क्या कारण, बोले तो शक्ति मात्र से विवक्षित तत्व, यहां तो शक्ति मात्र की विवक्षा है, कहने का अभिप्राय केवल यह है कि वहां शक्ति है उनमें। सर्वार्थ सिद्धि देवस्य सप्तम पृथ्वी गमन सामर्थ्य व्यपदेशवत्, जैसे सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वो एक देव के पास सप्तम पृथ्वी तक गमन करने की क्षमता है, ऐसा व्यपदेश है ऐसा कहा गया है, उसके समान यहां पर क्षमता की अपेक्षा से ये बात कही गई है। आह अब कोई कहता है यदि शरीरवत्यात्मनि परिष सन्निधानं प्रतिज्ञायते अथ भगवती उत्पन्न केवल ज्ञाने कर्म चतुष्टय फलानुभवन वशवर्तिनि कियंत उपनिपतन्ति यत्रोच्यते। बोले कि शरीरवान जो आत्मा है अर्थात जिस आत्मा के पास शरीर है, उस आत्मा में यदि परीक्षाओं का सन्निधान प्रतिज्ञात है मतलब आप स्वीकार करते हैं, तो फिर भगवान अरहंत भी जिनको उत्पन्न केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है तो उनमें 4 कर्मों के फलानुभवन की प्राप्ति होती है और उसके वो वशवर्ती है वशीभूत है, तो उन भगवंतों में कितने उपनिपतन कितने परिषय उनके समीप आ सकते हैं उपनिपतन इति, ऐसा प्रश्न पूछने पर अत्युत्तर यहाँ पर अत्र उच्यते कहा जाता है, क्या कहा जाता है सूत्र तस्मिन पुनः एकादश जिने, उस विषय में फिर कहते हैं एकादश जिने 11 परिषय केवल ज्ञान होने पर भी रहते हैं, निरस्त घाति कर्म चतुष्टय जिने, निरस्त हो चुके हैं घाति कर्म चतुष्टय जिनके, ऐसे जिनेन्द्र भगवान में वेदनीय सद्भावात वेदनीय कर्म का उदय होने के कारण अस्तित्व होने के कारण तदाश्रया एकादश परिषहा संति, वेदनीय के आश्रय से युक्त जो परिषय होते हैं वेदनीय जिसका जिनका आश्रय है ऐसे 11 परिषय होते हैं। ननुच फिर शंकाकार कहते हैं कि मोहनी उदय सहाया भावात क्षुदादि वेदना भावे परिषह व्यपदेशु न युक्त, मोहनी के उदय की सहायता के अभाव से भूख आदि की वेदना का अभाव जाने पर क्षुदादिक जो परिषह है वो कष्ट कहलाने लायक नहीं रह जाते, उनको परिषह व्यपदेश देना युक्त नहीं उचित नहीं है। तो उत्तर देते हैं सत्यमेव एतत्, आप सही कह रहे हैं, वेदना भावेपि द्रव्य कर्म सद्भावापेक्षा परिषह उपचार क्रियते, वेदना का अभाव होने पर भी द्रव्य कर्म का सद्भाव द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से परिश्रय का उपचार किया जाता है, यानी वास्तव में परिश्रय नहीं है लेकिन उपचार से कारण में कार्य का उपचार कर दिया, कार्य नहीं हो रहा है वहां पर। जैसे पॉइजन की बोतल पड़ी हुई है, अब किसी की डेथ नहीं हो रही है लेकिन पॉइजन की बोतल पर वो खोपड़ी बनी हुई है, एक आकार रहता ना मौत का एक ऐसा चिन्ह बना रहता पॉइजन की बोतल के ऊपर बनी हुई है, क्या करोगे, काम नहीं हो रहा उसका, कोई खा थोड़ी रहा पॉइजन, लेकिन तो भी कारण में कार्य का उपचार करके ये ऐसा कहा जाता है। निरवशेष निरस्त ज्ञानातिशय चिंता निरोधा भावे भी तत्फल कर्म निर्हरण फलापेक्षया ध्यानोपचारवत। जैसे पूर्णतः निरस्त हो चुका है ज्ञान का अतिशय जिनमें, अर्थात जिनका ज्ञान पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया उसमें अतिशय अधिकता या न्यूनता कुछ नहीं है, केवल ज्ञान सबके एक समान है, तो भी उनमें चिंता निरोधा भाव है भी। अब उस ज्ञान में कहीं वो एकाग्र थोड़ी हो सकता है, ज्ञान केवल ज्ञान, और एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, तो भी केवली भगवान में एकाग्रता न होते हुए भी चिंता निरोधा भावे भी, चिंता निरोधा भाव, चिंता निरोध का अभाव होने पर भी तत्फल जो ध्यान का फल होता है ना, कर्म निर्हरण फल अपेक्षा, कर्मों की निर्जरा जिसका फल होता है उसकी अपेक्षा से ध्यान उपचारवत, केवली भगवान को भी तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा उपचार किया जाता है। परमार्थ से ध्यान नहीं होता लेकिन निर्जरा होने की अपेक्षा से कहते हैं कि ये तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान हो रहा है, भगवान को ध्यान हो रहा है, तो ध्यान तो चित्त के एकाग्र होने को कहते हैं, अब वहां चित्त ही नहीं है, केवली भगवान तो केवली है, तो बिना चित्त के भी निर्जरा को देख करके ऐसा उपचार किया जाता है। तो वो कैसा, ये कैसा उपचार हुआ, कार्य हो रहा है इसलिए ऐसे कारण का उपचार किया जा रहा है। फिर अथवा दूसरा विकल्प बतला रहे, एकादश जिने न संति इति वाक्य शेष कल्पनीय है, ऐसी भी व्यवस्था की जा सकती है कि जिनेन्द्र भगवान में 11 परिशय नहीं है। सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, सूत्रों में सोपस्कार पना पाया जाता है, क्योंकि सोपस्कार का अर्थ होता है पुराने सूत्रों से उनका रिश्ता होता है, जो आगामी सूत्र होते हैं ना उनका पिछले सूत्रों के साथ नाता रिश्ता होता है, संबंध जुड़ा रहता है, इसलिए ऐसे भी आप कल्पना कर सकते हैं। कल्प्यो ही वाक्य शेषे वाक्यांश वक्तर्यधीनम, वाक्य वक्ता के अधीन होता है, ऐसा स्वीकार किया गया। इत्यभ्युपमात् मोहोदय सहायीकृत क्षुधादि वेदना भावात् न संति इति वाक्य शेष, नहीं होते ऐसा भी वाक्य बन सकता है, माने इस सूत्र में दोनों अर्थ निकल सकते हैं, एकादश जिने माने जिनेन्द्र भगवान में 11 होते हैं या फिर जिनेन्द्र भगवान में 11 नहीं होते हैं, ऐसा भी अर्थ निकलता है। 22 है ना, तो 22 में जैसा चाहे निकालो अर्थ, तो 22 का आधा तो 11 रहने ही, 11 नहीं होते ऐसा अर्थ निकालोगे तो भी 11 रहेंगे, और 11 होते हैं ऐसा अर्थ निकालोगे तो भी 11 नहीं रहेंगे, ऐसा। आहा, कोई कहता है यदि सूक्ष्म सांप्राय आदिशु व्यस्ता परिशा अर्थ समस्ता ता क्वेति, अब आपने दो भंग तो बता दिए, एक तो सूक्ष्म सांप्राय, फिर वितराग छद्मस, और फिर सर्वज्ञ जिन, ये तीन व्यवस्थाएं तो आपने बता दी दो सूत्रों में, तो उनमें कुछ कुछ परिशे होते हैं, एक में 14 रहते हैं, फिर 11 रहते हैं, ये तो आपने हिसाब बताया, सारे के सारे कहाँ रहते हैं? सभी परिशे कहाँ रहते हैं? ये प्रश्न करने पर आचार्य कहते हैं बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय गुणस्थान जो है पहले से लेकर नवम गुणस्थान जो है बादर सांप्राय, बादर मैंने बड़े मोटा स्थूल, और सांप्राय यानी कषाय, सांप्राय कषाय, सांप्राय का अर्थ कषाय, बादर सांप्राय यस, बादर सांप्राय की, बादर है सांप्राय यानी कषाय जिसकी, उसको बादर सांप्राय कहते हैं, उसमें सब का परिशोध। नैदम गुणस्थान विशेष ग्रहण, यह गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है, किन तरी तो किसका ग्रहण है? अर्थ निर्देश, अर्थ का कथन, तेन उससे प्रमत्तादी नाम संयता नाम ग्रहण, प्रमत्तादिक संयतों का ग्रहण होगा, तेषु ही, अब यहां अपन ने जो मिथ्या दृष्टि से सोचा था ना, वो असली में मूलाचार प्रदीप में कौन सी गति में कौन से गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं, ये सब चर्चाएं आती है मूलाचार प्रदीप में। यहाँ आचार्य महाराज चूंकि ये प्रकरण संवर निर्जरा का चल रहा है, तो फिर यहाँ अपन मुनियों को लेंगे, प्रमत्तादि नाम संहिता नाम ग्रहण, बादर सांप्राय से प्रमत्तादिक संयतों का ग्रहण कर ले रहा है, तेषु ही, क्योंकि उनमें अक्षीण कषाय दोषत्वात्, कषाय का दोष अक्षीण होने के कारण, नष्ट न होने के कारण, सर्वे संभवन्ति, सारे परिशय संभव, कस्मिन पुनश्चारित्र सर्वेषाम संभव, फिर चारित्र की अपेक्षा से कौन से चारित्र में सभी परिशयों की संभावना है, तो आचार्य उत्तर देते हैं सामायिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि संयमेशु प्रत्येकम सर्वेषाम संभव, सामायिक छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि संयम में एक एक में, सामायिक में 22, छेदोपस्थापना में 22 और परिहार विशुद्धि में 22 परिशय हो सकते हैं। अब कौन से कर्म का किस परिशय के साथ संबंध है वो बतला रहे हैं, आहा गृहीतम एत परिशाणम स्थान विशेषावधारणम, अब परिशयों का जो स्थान है कौन सा गुण स्थान है वो तो हमने निश्चित कर लिया आपके सूत्रों से, इदम तो न विद्मा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कस्या प्रकृति का कार्य इत्यत्र उचित है, किस प्रकृति का कौन सा परिशय कार्य है, यानी कौन सा परिशय किस कर्म प्रकृति का फल है वो हम नहीं जानते, इति इसलिए अत्र उचित है, यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी के द्वारा सूत्र कहा जाता है ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञानी, प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिशय ज्ञानावरण का जब तक उदय है तब तक है, ज्ञानावरण सप्तमी है, इदम उक्तम इदम अयुक्तम वर्तते, अब कोई कहता है कि ये सूत्र में जम नहीं रहा है किमत्र अयुक्तम, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी पूछते हैं कि तुम्हें इसमें क्या अयुक्त लग रहा है, अयोग्य क्या लग रहा है, तो बोले कि ज्ञानावरण सत्य ज्ञान परिषय उपपद्यते, ज्ञानावरण के होने पर अज्ञान परिषय तो संगत बैठता है, प्रज्ञा परिषय पुनस्तद उपाय भवति इति कथम ज्ञानावरण स्यात्, लेकिन प्रज्ञा परिषय जो होता है ज्ञान की वृद्धि रूप परिषय जो प्रज्ञा परिषय है वो ज्ञानावरण के अपाय में होता है, अर्थात ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर प्रज्ञा परिषय होता है, इसलिए कैसे ज्ञानावरण में आप दोनों को शामिल कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तो आचार्य उत्तर देते हैं इत्यत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है क्षयोपशमी की प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है वो क्षयोपशमिक है, प्रज्ञा अन्यस्मिन ज्ञानावरणे सति मदम जनयति, किसी अन्य साधु में ज्ञानावरण का उदय होने पर वो जो प्रज्ञा जिन जो एक साधु के अंदर क्षयोपशम से उत्पन्न हुई है वो अन्य किसी के अंदर ज्ञानावरण का उदय होने पर मद उत्पन्न करती है, ये देखो मेरे में कितना ज्ञान है वो कुछ भी नहीं सीख पाए, मैंने एक साल में इतना सीख लिया और वो 5 साल से दीक्षित है और कुछ नहीं सीख पाए, तो ये क्या हुआ, ज्ञानावरण के उदय में ही ये प्रज्ञा परिषय हुआ है, एक अज्ञान परिचय तो अपने ज्ञानावरण के उदय में होता है, और प्रज्ञा परिचय दूसरे के अंदर ज्ञानावरण का उदय है। ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, अपना बढ़ गया है तो अपने अंदर एक खलबली मच जाती है। मदम जनेति, मद उत्पन्न करता है। न सकलावरण क्षय इति, लेकिन सकल आवरण का क्षय हो जाने पर, सकल आवरण का क्षय है ना, ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय हो जाने पर ये मद नहीं होता, क्योंकि वो भीतराग को ही क्षय होता है ज्ञानावरण का। तो इसलिए ज्ञानावरण के उदय में ही ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए, यानी ये दो अपेक्षा से समझाया इन्होंने। प्रज्ञा परिचय कैसे होता है, एक तो दूसरे में ज्ञानावरण का उदय हो, तो ज्ञान नहीं बढ़ रहा हो तो अपने अंदर अभिमान आ जाता है कि मेरा ज्ञान बढ़ गया, भले अपने अंदर क्षय उपशम, तो वैसा होने के कारण अभिमान आ जाता है, तो ये परिचय हो जाता है, अभिमान भी एक कष्ट है। अथवा सकल आवरण का क्षय जब तक नहीं होता तब तक ज्ञानावरण तो विद्यमान है, चाहे कितना भी क्षय उपशम कर लो आप, माने श्रुत केवली भी बन जाओ तो भी ज्ञानावरण का तो उदय बना ही हुआ है 12वें गुणस्थान। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसा हो जाता है। पुनरअपरयो हो परिचयो हो प्रकृति विशेष निर्देशार्थम आह। फिर और दो जो परिचय हैं उनके विषय में प्रकृति विशेष, प्रकृति के भेद का निर्देश करने के लिए सूत्र कहते हैं, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो यथा संख्यम अभिसंबंध। क्रम से संबंध जोड़ लेना, दर्शन मोह का संबंध अदर्शन से और अंतराय का संबंध अलाभ परिचय से जोड़ना। दर्शन मोह है अदर्शन परिचय, दर्शन मोह के उदय में यानी मिथ्यात्व के उदय में अदर्शन परिचय होगा, और लाभांतराय अलाभ परिचय, लाभांतराय के उदय में अलाभ परिचय होगा। इस प्रकार आह। फिर कोई कहते हैं, यद्याद्ये मोहनीय भेदे एक परिचय, यदि प्रथम मोहनीय का जो भेद है मिथ्यात्व उसके उदय में एक ही परिचय होता है, अर्थात द्वितीय अस्मिन, जो दूसरा भेद मोहनीय का कौन सा है, पहला दर्शन मोहनीय और दूसरा चरित्र मोहनी, तो उसके उदय में कति भवन्ति, कितने परिचय होते हैं इति अत्र उच्यते। ऐसा प्रश्न करने पर यहाँ आचार्य द्वारा कहा जाता है, चरित्र मोहे, चरित्र मोह यानी कषाय के उदय में नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोशवध याच, नहीं नाग्न्या चरित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। 22 परिषयों वाला सूत्र मुंह से निकल गया। यहाँ पर चरित्र मोह जनित 8 परिषयों के नाम दिए, कषाय के उदय में और 9 कषायों के उदय में नाग्न्य नग्नता का कष्ट होता है, अरति अरति का कष्ट होता है, स्त्री संबंधी बाधा हो जाती है, फिर निषद्या बैठने संबंधी भी बाधा होती है, चरित्र मोह वेदना तो वेदनी से हो रही है लेकिन आसन बदलने की जो इच्छा होती है वो कषाय है, वेदना वेदनी से उत्पन्न हो रही है लेकिन सहन नहीं कर पा रहे, ये मोहनी का कार्य है, ये कषाय का कार्य है, बहुत बारीक बात है। सहन नहीं कर पा रहे, बस इच्छा कर रहे हैं हटा दे, हम बिल्कुल दर्द हो रहा है तो समता न रख करके विषमता आ जाती है, राग होता है ये दर्द हो रहा है तो शरीर के उससे द्वेष होता है दर्द के प्रति, तो अर्थ ध्यान होता है, तो अनिष्ट संयोग हुआ है तो उसका तद विप्रयोग आय स्मृति समन्वय, उसका वियोग करने के लिए जो ध्यान होता है वो अर्थ ध्यान है, तो वियोग करने के लिए ध्यान के साथ में वो चेष्टा कर लेते हैं ऐसे बैठे, तो इसमें चारित्र मोह इसलिए क्योंकि इसमें चारित्र को चारित्र पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई भी जीव हो आपको अगर तकलीफ हुई आसन में और आपने एकदम सहन नहीं हुई आपने एकदम हटा लिया आपने, तो फिर किसी जीव को बाधा पहुंच सकती है और बाधा पहुंचने पर चरित्र में मतलब दोष उत्पन्न होगा। चरित्र मोह में निषिद्ध परिचय होता है, फिर आक्रोश परेशान, किसी ने उल्टे सीधे शब्द बोल दिए तो आपको तकलीफ होने लगी, ये भी कषाय से होती। याचना, मांगने की जो स्थिति होती है, इच्छा होती है, वो भी कषाय से होती है। फिर सत्कार पुरस्कार, और सत्कार पुरस्कार जो है, जब किसी और की खूब पूजा होती है और अपनी नहीं होती है, अपने को सम्मान नहीं मिलता, तो फिर अंदर ही अंदर कुछ तकलीफ से होती है, ये परीक्षा कषाय से होती है। पुंवेदोदयादि निमित्तत्वान नाग्न्यादि परीक्षाणाम मोहोदय निमित्तत्व प्रतिपाद्यामहे। पुरुष वेद आदि के उदय का निमित्त होने से नग्नता आदि परेशाओं का, मोहोदय रूप निमित्त पना हम प्रतिपादित कर रहे हैं। निषिद्ध्या परेशा से प्रथम, बोले ये जो निषिद्ध्या जो बैठने आसन वाला जो परेशा है, वो कैसे चारित्र मोह में आ गया, वो तो वेदनी में जाना चाहिए था। काचेर उत्तर देते हैं, तत्रापि प्राणी पीड़ा परिहारार्थत्वात्, उसमें भी प्राणियों की पीड़ा का परिहार करना उसका प्रयोजन होता है परिचय जय का, कि आप हिलते नहीं है तो जीवों को बाधा नहीं होती है, और हिलते डुलते हैं तो बाधा पहुंचती है। अपने शरीर में भी बहुत सारे जीव है ना तदाश्रित, तो हिलने से उनको बाधा पहुंचती है। मोहोदय सती, मोह का उदय होने पर प्राणी पीड़ा परिणाम संजायत इति, प्राणी पीड़ा रूप परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं इति, इसलिए अवशिष्ट परीक्षा प्रकृति विशेष प्रतिपादनार्थ माह। अब बाकी बचे हुए जो परीक्षा हैं वो किस प्रकृति के उदय में होते हैं उसका प्रतिपादन करने के लिए आगामी सूत्र कहते हैं, 16वां सूत्र है। वेदनीय शेषाः, वेदनीय के उदय में बाकी परीक्षा होते हैं। उक्ता एकादश परीक्षा, 11 परीक्षा हम बता चुके हैं, तेभ्युन्नीय शेषा, उससे भिन्न जो है वो 11 शेष है। वेदनीय सति भवन्ति, वो वेदनीय के उदय में होते हैं इति वाक्य शेष है, ये वाक्य शेष हो गए। के पुनस्ते, वे कौन से हैं, तो आचार्य महाराज इनके नाम बता रहे हैं 11 परीक्षाओं के जो वेदनीय के उदय में होते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक शर्या शय्या वध रोग तृणस्पर्श मल परीक्षा। अब देखिए एकादश जिने में भी क्या लिखा था, एकादश जिने में वेदनीय सद्भाव तदाश्रया एकादश परीक्षा संधि, यही नाम है वहां पर भी। और हो भी नहीं सकते ना, बाकी तो सब समाप्त हो गए कल केवली भगवान में, वेदनी का उदय रहता है ये परिसर होते नहीं, कार्य रूप नहीं होते, बस वो पॉइजन की बॉटल पर खोपड़ी बनी, बस और कुछ नहीं। उस अपेक्षा से उपचार से बोला ना, ये वास्तविक नहीं है परिसर, उपचार है, उपचार से। आह कोई कहता है, व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्पाः प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवन्तः कति युगपद अवतिष्ठन्ति कति युगपद अवतिष्ठन्त इत्यत्र उच्यते। व्याख्या में आ चुके हैं निमित्त और लक्षण और विकल्प जिनके, ऐसे ही 22 परिषद प्रत्यात्मनि एक आत्मा में प्रादुर्भवन्तः उत्पन्न होते हुए कति कितने युगपद अवतिष्ठन्ति अवस्थित रह सकते हैं एक साथ, यानी एक साधु में एक साथ कितने ये कष्ट हो सकते हैं एक समय में, पूरे के पूरे 22 हो सकते हैं क्या, तो उसका उत्तर देते हैं, एकादयो भाज्या युगपद एकस्मिन् नैकोनविंशते हि। एक को आदि लेकर के आप विभाजन कर सकते हैं, जैसे भोजन करने के बाद क्षुधा तृषा नहीं है, और गर्मी सर्दी जहाँ नहीं है, मौसम समति शीतोष्ण है, तो वहां पर वो परिसर भी नहीं है। ऐसे अभाव करते करते आप एक परिसर को आधे लेकर फिर अधिकतम 19 परिसर हो सकते, 22 में से 3 कम रहेंगे। एक साथ कभी भी 22 नहीं हो सकते, 20 भी नहीं हो सकते, 21 भी नहीं हो सकते, 19 तक हो सकते हैं। आ एकोन विंशते है, पंचमी का प्रयोग है, आंग अभिविधि के रूप में लिया गया है, मर्यादा के रूप में लिया गया, अभिविधि के रूप में लिया, माने दीवार तक, उस दीवार तक ये मंदिर की भूमि है। तो दीवार तक के दो अर्थ होते हैं, एक तो ये दीवार के अंदर तक मंदिर की भूमि है, और एक जहां तक दीवार पूरी अंदर तक बनी हुई है उसकी जो मतलब दीवार का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो भी मंदिर का है। तक तक शब्द के ऐसे दो अर्थ होता है, दीवार पर्यंत, तो पर्यंत में अंदर वाला भाग भी हो सकता है और दीवार को मिलाकर भी हो सकता है। तो यहां पर मैं मिला करके कह रहे हैं 19 तक, यानी पूरे 19 परिसर एक साथ हो सकते हैं कोई मुनिराज की। तत् कथम इति चेत उच्यते, तो फिर वो कैसे होते हैं, तो ये बात बतलाते हैं कि शीतोष्ण परिषह यो रेक, शीत और उष्ण परिषह दो परिषह, इन दो में से एक ही होगा। गर्मी के मौसम में सर्दी नहीं होगी, सर्दी के मौसम में गर्मी नहीं होगी, दोनों में से एक होगा। फिर शय्या निषद्या चर्याणाम चान्यतमः, फिर जो तीन परिसर बताए हैं, शय्या यानी सो रहे हैं, निषद्या यानी बैठे हुए हैं, चर्या यानी चल रहे हैं, अब ये तीनों एक साथ हो नहीं सकते। तीन में से दो छोड़ना पड़ेंगे, अगर एक होगा एक काल में, अगर लेटे हैं तो बैठने का कष्ट नहीं होगा और चलने का कष्ट नहीं होगा, और अगर बैठे हैं तो लेटने का और चलने का कष्ट नहीं होगा, अगर चल रहे हैं तो बैठने का और सोने का कष्ट नहीं होगा, सोते समय जो चुभन वगैरह होती है ना वो सब नहीं होगी। चान्यतम ये वो भवति, एक ही हो सकता है, एकस्मिन् आत्मनि, एक आत्मा में, एक साधु में, एक साथ ये कितने कम हो गए, तीन कम हो गए, शीत और उष्ण में से एक कम हो गया, और शय्या निषद्या और चर्या इन तीन में से एक कम हो गया। कुतः, कैसे, विरोधा, कि विरोध आता है एक साथ होने में। तत् त्रयाणाम अपगमे, तीन कम हो गए तो युगपद एकात्मनि इतरेषां संभवाद एकोन विंशति विकल्पा बोद्धव्या, फिर एक साथ एक जीव में, एक मुनिराज में बाकी 19 परिसर हो सकते हैं, इसलिए 19 भेद जान लेना। फिर एक प्रश्न आया, ननु प्रज्ञा ज्ञानयोरपि विरोधात् युगपद असंभव, बोले प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों परिसर भी एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये एक साथ असंभव है। शंका की, समझ में आई शंका, प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान अधिक होना और अज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान ना होना, तो ये दोनों कष्ट एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो आचार्य उत्तर देते हैं, श्रुत ज्ञान अपेक्षा प्रज्ञा परिषय, श्रुत ज्ञान अच्छी प्रज्ञा है तो श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से प्रज्ञा परिषय हो गया, और अवधि ज्ञानाद्यभाव अपेक्षा अज्ञान परिषय, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान नहीं है तो उसके न होने का कष्ट होता है, तो प्रज्ञा परिषय के साथ अज्ञान परिषय हो सकता है, इति नास्ति विरोध, इसलिए विरोध नहीं है। आह उक्ता, कोई कहता है कि कह दिया आपने गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय जया संवर हेतु पंच, आपने पांच संवर के हेतु कहे थे, तो फिर संवर हेतु चारित्र संजनियो वक्तव्य थी, अब संवर का जो हेतु चारित्र है वो भी बताने योग्य, पांच तो आपने बतला दिए, गुप्ति बता दी, समिति बता दी, धर्म बता दी, अनुप्रेक्षा बता दी और परिषय जय बतला दी, अब एक तो छूट गया है। तो आचार्य कहते हैं कि तद भेद प्रदर्शनार्थम उच्यते, चरित्र के भेद को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र कहा जाता है, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक चरित्र, चिदोपस्थापना चरित्र, परिहार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म सांपराय चरित्र और यथाख्यात, इस तरह इस चरित्र के पांच भेद हैं। अथ चोद्यते, अब कोई पूछता है दशविधे धर्मे संयम उक्त, दस प्रकार के धर्म में आपने संयम बताया था, सयव चारित्रम इति, वही तो चारित्र है, इति पुनर्ग्रहण अनर्थकम इति, फिर ये दोबारा ग्रहण करना तो व्यर्थ हो गया, संयम तो आ ही चुका था पहले। तो आचार्य उत्तर देते ना अनर्थकम, अनर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, क्यों, धर्मेन्तर्भूतम अपि चारित्रम अंते गृह्यन्ते, गृह्यते, धर्म में चारित्र अंतर्भूत होते हुए भी चारित्र को अंत में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ते ही साक्षात कारण इति ज्ञापनार्थम, कि मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण होता है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए चारित्र को अंत में ग्रहण किया जाता है। सामायिक मुक्तम, सामायिक हम बता चुके हैं, कहाँ बता दिया, तो आचार्य उत्तर देते हैं दिग्देशान अर्थ दंड व्यर्थ सामायिक इत्यत्र, सातवें अध्याय में एक सूत्र आया था जिसमें शिक्षा व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत था, तो बोले वहां बता चुके हैं। तद द्विविधम, वो दो प्रकार का होता है, नियत काल मति मनियत कालंच, नियत कालिक सामायिक और अनियत कालिक सामायिक। स्वाध्याय आदि नियत कालम, स्वाध्याय आदि जो होता है वो नियत कालिक सामायिक है। देखिए स्वाध्याय को भी सामायिक कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, स्वाध्याय भी नियत कालिक सामायिक है, पर ईर्यापथात अनियत कालम, और ईर्यापथाधिक जो है वो अनियत कालिक है। प्रमाद कृतानर्थ प्रबंध विलोपे, प्रमादकृत अनर्थ के प्रबंध का विलोप होने पर सम्यक प्रतिक्रिया, समीचीन जो प्रतिक्रिया होती है, छेदोपस्थापना विकल्प निवृत्तिर्वाह, उसको छेदोपस्थापना कहते हैं, विकल्पों से निवृत्ति भी कहते हैं। विकल्प निवृत्ति या निर्वृत्ति, कोई बात नहीं, अभी अपन इसमें अर्थ निकाल दें। प्रमाद से किए गए जो अनर्थ थे, उन अनर्थों का जो प्रबंध था, उसका विलोप होने पर, अर्थात प्रायश्चित कर लेने पर, या उसके विलोप के विषय में जो सम्यक प्रतिक्रिया, प्रायश्चित रूप क्रिया की जाती है, उसका नाम छेदोपस्थापना है। एक अर्थ हुआ, और विकल्प निवृत्तिर वा, अथवा दूसरा अर्थ यह है कि विकल्प, विकल्प का अर्थ यहाँ पर भेद है, संकल्प विकल्प नहीं लेना, यहाँ पर विकल्प का अर्थ भेद है कि ये अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत आदि जो 28 मूल गुणों के जो भेद हैं उसको छोड़ देना, सिर्फ एक एक रखना भाव कि मैंने सब पापों का त्याग कर दिया, सर्व सावध विरतोस, ये तो सामायिक चरित्र हो जाएगा। अगर विकल्प निर्वृत्ति होता ना, तो फिर विकल्पों की रचना माने 28 मूल गुणों के भेद को प्राप्त होना, ये सामायिक प्राप्त चरित्र होता, ये छेदोपस्थापना चरित्र होता है। या फिर ऐसा ले लें कि विकल्पों की निवृत्ति का अर्थ ये ले लें कि जो अपन से दोष लगे हैं, अपने दोष लगे हैं, तो उसकी निवृत्ति जिस शुद्धिकरण से, प्रायश्चित से होती है, तो वो तो पहले ही बदला चुके हैं, फिर वाह करके इसको क्यों बताएंगे दूसरी बार, और देखते हैं। निवृत्तिर, संकल्प विकल्प निषेध हो वा छेद उपस्थापना, यहाँ पर विकल्प का वही नहीं है, संकल्प विकल्प का निषेध करना भी छेद उपस्थापना। आचार्य अकलंक देव की शरण में जाकर के तत्वार्थ वार्तिक से अपन देखते हैं क्या समाधान है। सामायिक चरित्र के लिए आचार्य कहते हैं सर्व सावध्य योग प्रत्याख्यान परम, सर्वस्य सावध्य योगस्याभेदेन प्रत्याख्यानमवलंब्य प्रवृत्तम अवधृत कालम वा सामायिकम इत्याख्यायते। संपूर्ण पाप प्रवृत्तियों को समान रूप से त्याग कर देना और उस त्याग का आलंबन लेकर के प्रवृत्त हो जाना एक निश्चित काल तक के सामायिक कहलाता है। प्रमाद कृता नर्थ प्रबंध विलोपी सम्यक प्रतिक्रिया छेदों की स्थापना, देखिए इसमें कोष्टक में उन्होंने निर्वृत्ति लिखा है। अथवा सावध्यम कर्म हिंसादि भेदेन विकल्प निर्वृत्ति ही छेद उपस्थापन, यानी सामायिक चरित्र में महाव्रती हो गए और छेद उपस्थापना में 28 मूल गुण हो गए, 28 मूल गुणों के जो भेद किए हैं वो छेद उपस्थापना ये हो गया, तो अच्छी बात है। फिर परिहार विशुद्धि, परिहरणम परिहार प्राणिवधात् निवृत्ति, परिहार का अर्थ होता प्राणी हिंसा से निवृत्ति हो जाना। तेन विशिष्ट शुद्धि यस्मिन् परिहार विशुद्धि चरित्र, जिस चरित्र में उससे विशिष्ट एक शुद्धि पाई जाती है, एक प्रकार की बड़ी भारी रिद्धि होती है, वो परिहार विशुद्धि चरित्र। कर्म मल कलंक प्रक्षालन यस्मिन् चारित्रे तत्परिहार विशुद्धि चारित्रम इतिवा विग्रह, कर्म मल कलंक का जिसमें प्रक्षालन होता है जिस चारित्र में वो तो परिहार विशुद्धि चारित्र है। तल लक्षणम यथा, परिहार विशुद्धि चारित्र का परिचय बता रहे हैं क्या कि द्वात्रिंशत वर्ष जातस्य, जो 32 साल के हो चुके हैं, जिनकी उम्र 32 साल गुजर चुकी है और बहुकाल तीर्थ पाद सेविना, जिन्होंने बहुत समय तक तीर्थंकरों के चरणों की सेवा की अर्थात बार बार समोसण जाते रहे, 32 साल तक उन्होंने सब सांसारिक सुख देख लिए और अब 32 साल की उम्र के बाद बार बार तीर्थंकरों के पास जाते रहे हैं और प्रत्याख्यान नाम ध्येय नवम पूर्वोक्त सम्यक आचार वेदिना, नौवा जो पूर्व होता है प्रत्याख्यान नाम ध्येय होता है उसमें कहे हुए सम्यक चरित्र को जानने वाले हैं और अति पुष्कल चर्यानुष्ठाइनस, दीक्षा लेकर के अब ये 32 साल की उम्र में दीक्षा ली और अब अत्यंत अत्यधिक चर्या का अनुष्ठान करने वाले हैं और त्रिसंध्या वर्जयित्वा तीन संधि कालों को छोड़ करके सूर्योदय सूर्यास्त और मध्यान्ह इन तीन कालों को छोड़ करके द्विगव्युतिगामिनः मुनि प्रतिदिन दो कोस गमन करने वाले मुनि के पास ये परिहार विशुद्धि चरित्र होता है। तथा चोक्तम कहा भी है 32 वास जम्मी वासुपुदत्तं च तिथेर मूले पच्चखाणं पड़िदो संजूण दुगाव विहारो। 32 जन्म से 32 वर्ष होने पर 3 से 9 साल तीर्थंकरों के चरणों में रह करके प्रत्याख्यान नाम का जो नवम पूर्व है उसका स्वाध्याय करके जिनको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि जिनके शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता तो उनको पिच्छी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती और वो प्रतिदिन दो गव्युति गमन करते हैं यानी आधा योजन रोज गमन करते हैं। केवल संध्याओं को छोड़ करके तो कभी भी गमन कर सकते रात में भी गमन कर सकते उनके शरीर से जीवों का घात होना ही नहीं है तो तुम ज्यादा टेंशन क्यों ले। उनका शरीर ऐसा बन चुका है इतनी उनने साधना की हुई है कि उनके शरीर से किसी जीव तकलीफ हो ही नहीं सकती। आचार्य सार में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कुछ भी नहीं होता किसी भी जीव को कुछ होता ही नहीं उनके शरीर से ऐसा शरीर हो जाता है उनको। बहुत बड़ी रिद्धि है परिहार विशुद्धि। त्रिवर्षादोपरि नववर्ष नवम वर्षाभ्यंतरे वर्ष पृथक्त्व उच्यते। वर्ष पृथक्त्व का अर्थ होता है 3 साल से अधिक और 9 साल से कम उतने समय तक तीर्थंकर के चरणों में रहकर जिनको ये शक्ति प्राप्त होती है वो परिहार विशुद्धि संयम कहलाता है। फिर सूक्ष्म सांप्राय जो होता है वो सूक्ष्म लोभ के उदय में पाया जाता है और यथाख्यात जो होता है वो वितराग होने पर पाया जाता है। इस तरह 5 प्रकार के चरित्र संपन्न हुए। अब निर्जरा का जो वर्णन है वो प्रारंभ होगा कि निर्जरा तप से होती है तपसा निर्जराच तो वो तप क्या है। आ उक्तम चरित्र आप कह चुके हैं चरित्र क्या होता है तदनंतर उद्दिष्टम यह तपसा निर्जराच उसके बाद जो आपने सूत्र कहा था तपसा निर्जराच इति तस्येदानीं तपसो विधानम कर्तव्यम इत्यत्र उच्यते। इसलिए अब यहाँ पर तप का अनुष्ठान कर लेना चाहिए इसलिए यहाँ पर कहा जाता है तत् विविधम उसके 2 भेद हैं बाह्यम आभ्यंतरम च बाह्य तप और आभ्यंतर तप तत् प्रत्येकम 6 विधम और दोनों 6 प्रकार के हैं। तत्र बाह्य भेद प्रतिपादनार्थ माह उनमें से बाह्य तप के भेद बतलाने के लिए आगामी सूत्र कहेंगे। जय नम जयतु शासनम।